Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستفي من الملائكه رسلا ومن الناس، ان الله سميع بصير، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، والى الله ترجع الامور. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو یہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں، ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم نے کل مکمل کر لیا تھا. آج معارف و مسائل ہم شروع کر رہے ہیں پیج نمبر 288 سے. تو معارف و مسائل حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے تالیف کردہ ہیں، ان کے اپنی یعنی کمپائلیشن ہے، جو کہ حضرت نے اپنی جو سمجھ ہے، جو انہوں نے علم سے حاصل کری ہے، تو وہ بھی لکھی ہوتی ہے اس کے اندر، اور جو ہے وہ مختلف تفاسیر سے بھی اس کو کوٹ کیا ہوتا ہے، بہت سارے مختلف جو ان کے ذرائع ہیں علم کے، تو ان سب کو پھر یعنی یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے نقل کر دیا ہوتا ہے. تو معارف و مسائل میں سب سے پہلے سورہ حج کا سجدہ تلاوت، اس کے بارے میں کل بات بھی ہوئی تھی کہ یہ والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اس والی آیت کے اوپر سجدہ لکھا ہوا ہے، ایون معروف قرآن کے اندر بھی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، سورہ حج میں ایک آیت تو پہلے گزر چکی ہے جس پر سجدہ تلاوت کرنا باتفاق واجب ہے. تو شروع میں ایک آیت گزر چکی ہے، لیکن وہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے جو ہماری تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ہم پڑھ کے اس کے آگے سے گزر چکے ہیں، تو وہاں پر اس کے بارے میں بات ہو چکی تھی. سجدہ تلاوت کے مسائل کے بارے میں بھی یاد پڑتا ہے کہ وہاں پہ کچھ باتیں ہوئی تھیں. تو اس آیت پر، اب جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت پر جو یہاں مذکور ہے سجدہ تلاوت کے وجوب میں، ائمہ کا اختلاف ہے. ائمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اماموں کا اختلاف ہے. لیکن یہاں پر امام سے مراد کوئی بھی امام نہیں، جیسے مسجد کا امام یا جو ہے وہ آج کا کوئی امام، بلکہ ائمہ کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو ائمہ فقہا مجتہدین مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں کہ چار جو ہیں وہ سب سے زیادہ مشہور ہیں، اور انہی کا پھر امت کے اندر فقہ جو ہے وہ رائج ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو ائمہ کا لفظ جو ہے وہ عموماً انہی چاروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے وہ ایک بڑے مجتہد امام مانے جاتے ہیں، لیکن ان کی فقہ جو ہے وہ امت کے اندر رائج نہیں ہوئی. اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے شہرت تو دے دی، لیکن ان کا جو علم ہے وہ آگے عوام میں اس کو مقبولیت نہیں ملی، یا عوام میں تو خیر یہاں پہ بات نہیں ہوتی، علماء میں اس کو مقبولیت نہیں ملی، علماء نے اس کو زیادہ قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایسے ہی ائمہ میں شمار ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک بڑے امام مجتہدین میں سے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا فیصلہ ہوا کہ ان کی حدیث تو راجع ہوئی، ان کی فقہ راجع نہیں، ٹھیک ہے. تو عجیب، یعنی ये क्राइटेरिया, जैसे कल भी बात हुई थी ना, क्राइटेरिया अल्लाह ताला बनाते हैं और उसके मुताबिक अल्लाह ताला पसंद करते हैं किसी को किसी काम के लिए, किसी को किसी काम के लिए। ठीक है, तो उनको हदीस के लिए पसंद कर लिया, इनको जो है वो दूसरी चीजों के लिए पसंद कर लिया, इनको जो है फिका के लिए पसंद कर लिया। ठीक है, तो उनके नजदीक यानी इन इन तीन आयम्मा के नजदीक इस आयत पर सजदे तिलावत वाजिब नहीं है, क्योंकि इसमें सजदे का जिक्र रुकू वगैरह के साथ आया है, जिससे नमाज का सजदा मुराद होना जाहिर है, क्योंकि रुकू तिलावत तो कोई चीज नहीं होती ना। ठीक है, रुकू तिलावत तो कोई चीज नहीं होती, रुकू तो सिर्फ और सिर्फ नमाज के अंदर होता है, मुसलमानों की कोई और इबादत की शक्ल नहीं है जिसके अंदर जो है वो रुकू करके इबादत अदा की जा रही हो। ठीक है ना, या तो भाई आप खड़े खड़े इबादत करते हैं, जो भी इबादत, जकात देने की, सदका देने की, हज करने की, तवाफ करने की, ये सारी इबादतें कैसे होती हैं, खड़े होकर के होती हैं। ठीक है ना, या जो है वो नमाज की शक्ल की इबादत है। ठीक है, या ये कि आप बैठ जाते हैं, बैठ करके जो है वो तस्बीह और तहमीद और जो है वो जिक्र अस्कार और मुराकबा और ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। रुकू तो किसी चीज में नहीं आता, ठीक है ना, रुकू करके जो है वो ये वाली तस्बीह जो है ना वो आपने रुकू की हालत में पढ़नी है, या ये वाला तवाफ जो है ना, इस तवाफ का फलाना वाला जो 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 रुकन है ना, ये तवाफ का ये वाला रुकन जो है ना, ये आपने रुकू की हालत में करना है। रुकू की हालत में कोई चीज नहीं है सिवाय नमाज के रुकू। ठीक है, तो अइमा कराम जो दलील पकड़ते हैं, जो जो रीजनिंग करते हैं ना कि भाई क्यों ये है? अगर अगर तो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमा दिया तो फिर तो रीजन करने की जरूरत ही कोई नहीं है, लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलाम का एक्सप्लिसिट हुक्म नहीं मिला तो फिर ये फुकहा आइम्मा कराम की अल्लाह ताला ने ये जॉब लगाई है कि अब तुम जो है ना वो इज्तिहाद करो, इज्तिहाद करके यानी इसके ऊपर गौर करो, फिक्र करो, दीगर जो तुम्हारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं उनकी बुनियाद उनको देखो, और जाहिर है अल्लाह के साथ खालिस नीयत के साथ ये सारे सारे काम करो, अब तुम जिस नतीजे पे पहुंचोगे ना, ये फिर मेरी तरफ से भी इसको अप्रूवल मिल जाएगी। ठीक है, ये भी जो है वो दीन का हिस्सा बन जाएगा, तुम्हारा इज्तिहाद दीन का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इज्तिहाद किया और इज्तिहाद के नतीजे में पहुंचे कि नहीं जी, यहाँ पे तो सजदे तिलावत वाजिब नहीं है, क्योंकि इसमें सजदे का जिक्र रुकू वगैरह के साथ आया है, जिससे नमाज का सजदा मुराद होना जाहिर है, जैसे वसजुदी वरकई मार राकिईन। ठीक है, कि तुम राकिईन रुकू करने वालों में से हो जाओ रुकू करके। ठीक है, तो इसमें सबका इत्तेफाक है कि सजदे नमाज मुराद है, इसकी तिलावत करने से सजदे तिलावत वाजिब नहीं होता। इसी तरह आयत मजकूरा पर भी सजदे तिलावत वाजिब नहीं है, इस वाली आयत के ऊपर सजदे तिलावत वाजिब नहीं है। इन तीनों ने हजरात ने ये कहा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के नजदीक, यानी इनके अलावा वगैरह हु के मतलब कि इन दोनों के अलावा भी कुछ इमाम है जिनका जिक्र हजरत ने नाम के साथ यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, तो उनके नजदीक इस आयत पर भी सजदे तिलावत वाजिब है। उनकी दलील एक हदीस है जिसमें यह इरशाद है कि सूरह हज को दूसरी सूरतों पर यह फजीलत हासिल है कि इसमें दो सजदे तिलावत हैं। इमाम अच्छा यानी इन इन आयम्मा ने सजदे तिलावत किस बुनियाद पर कि भाई हदीस पहुंची है, हमें कोई वही नहीं आई हमारे ऊपर, या हमारा जी नहीं चाह रहा कि हम यहाँ पे सजदा करें, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भी सजदा जो है वो वाजिब होगा। ठीक है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक इस रिवायत के सबूत में कलाम है, इस रिवायत के सबूत यानी वो वाली रिवायत, वो वाली हदीस के जिसमें ये फरमाया ना कि सूरह हज को जो है वो दूसरी सूरतों के ऊपर फजीलत है कि इसके अंदर दो सजदे हैं, तो ये जो हदीस है ना इसके सबूत में कलाम है। इसका मतलब क्या होता है कि क्या ये हदीस वाकई नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, जिसको सही हदीस कहा जाता है या जो है वो हसन हदीस कहा जाता है, या ये कोई ज़ईफ़ हदीस है। ज़ईफ़ हदीस कलाम करने का मतलब इट्स ओपन फॉर डिस्कशन अमंग द उलमा, अवामुन्नास की डिस्कशन के लिए ओपन है। नहीं, कलाम है का मतलब अवाम इसमें अब डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी तरफ से जो है वो राय पेश कर सकते हैं, नहीं, बल्कि उलमाए कराम ने जो है, जो मुहद्दिसीन के दर्जे के उलमा थे, उन्होंने इस हदीस की सेहत के ऊपर यानी डाउट किया है कि नहीं, इसकी जो जो चेन ऑफ नरेशन है, इसकी जो इसनाद है ना, इसके अंदर जो है वो ज़ौफ है, और जो ज़ईफ़ हदीस होती है, ये आप भी अब तो सबको ये बातें रटी गई हैं, पहले तो हमें तो पता ही नहीं था ये सब क्या होता है, लेकिन अब तो इतना ज्यादा इसके ऊपर माशाल्लाह दीनी हवाएं, दीन की हवाएं चला दी अल्लाह ताला ने, तो माशाल्लाह दीनदारी की जो है अब कोई कमी नहीं है। तो इस वजह से ये सारी डिस्कशंस अब बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक पहुंची हुई हैं, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक, कि जी ज़ईफ़ हदीस क्या होती है और ज़ईफ़ हदीस जो है वो ऐसे होती है और उसकी वजह से जो है वो वाजिब को जो है वो आप साबित नहीं कर सकते, फजाइल को आप साबित कर सकते हैं, राइट। तो अब जब ज़ईफ़ हदीस हो गई, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस, बल्कि इमाम आजम कहलाते हैं, सारे आइम्मा से जो है वो बड़े इमाम इनको माना जाता है, तो इन्होंने फरमाया कि इसमें जब ये ज़ौफ़ आ गया ना, तो अब ज़ौफ़ से तो ये बात हम जैसों को भी पता है, हम जैसे बिल्कुल ही यानी निमट जाहिल किस्म के लोग भी, कि ज़ौफ़ से जो है ना फिर आप वाजिब को साबित नहीं कर सकते। तो सजदा ये जो सजदा तिलावत का वाजिब होना, ये इस हदीस की बुनियाद पर साबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कहते हैं कि नहीं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ज़ौफ है ही नहीं इसके अंदर, इस हदीस की इसनाद में ज़ौफ है ही नहीं, तो भाई फिर वो क्यों इसको कहें कि ये वाजिब नहीं है, ठीक है। तो भाई आइम्मा का यही मामला होता है कि उन सबकी अपनी अपनी रिसर्च होती है और अपनी जो है वो यानी उन पर फिर इज्तिहाद होता है, इसी वजह से इज्तिहादी इख्तिलाफ मौजूद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक नमाज के अंदर हाथ जो है वो नाफ के ऊपर मर्दों ने बांधना होता है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक नहीं, मर्दों ने भी जो है वो सीने के ऊपर हाथ बांधना होता है ना, इस किस्म की जो, तो ये किस बुनियाद पर है, यही रीजन है इसके, और ये इल्मी इख्तलाफ है। इसके ऊपर तफसील से पहले बात हो चुकी है कि इल्मी इख्तलाफ जो है ना ये बुरा नहीं होता। हाँ, इल्मी इख्तलाफ की वजह से गालियां शुरू कर देना, सबको शतम करना शुरू कर देना, ठीक है ना, और जो है वो बदतमीजी का मामला एक दूसरे के साथ इख्तियार कर लेना, ये बुरा है, ठीक है। तो जब इखलाकी तरबियत नहीं होती है तो फिर इल्मी इख्तलाफ जो है वो इन चीजों का सबब बन जाता है, और जब इखलाकी तरबियत होती है तो इल्मी इख्तलाफ जो है वो बहुत हसीन चीज होता है, और इसकी वजह से जो है वो बल्कि दीन के अंदर वुसअत पैदा हो जाती है, आसानी पैदा हो जाती है, कि सिर्फ एक ही तरीके से काम करना जो है बस वही नहीं, बल्कि मल्टीपल तरीके हैं जिस, ठीक है। तो वो फिर अपने आइम्मा से पूछ करके इंसान जो है वो उनमें पिक एंड चूज कर सकता है, आइम्मा से पूछ करके, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अपने शेख से या अपने जो है वो जो 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 उलमाए हैं, उलमाए कराम हैं मौजूद, उनसे मशवरा करके फिर अगर ये रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता, दूसरा नहीं तो तीसरा रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है, ठीक है। तफसील इसकी कुतुब फिका व हदीस में देखी जा सकती है, ठीक है। किसी को अगर इसके ऊपर कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। आगे जिस अगली आयत का को मारुफ मसाइल में जिक्र किया वो है वजाहिदु फिल्लाही हक्का जिहादी, ठीक है। तो कहते हैं कि लफ्ज जिहाद और मुजाहिदा किसी मकसद की तहसील में अपनी पूरी ताकत खर्च करने और उसके लिए मुशक्कत बर्दाश्त करने के मानी में आता है, ठीक है। यानी जितना मुमकिन है उतना मेहनत करना, और मेहनत करने की वजह से जो पसीना छूटता है या जो तकलीफ उठानी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं या बुरी बुरी बातें सुननी पड़ती हैं या और कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये जब इंसान काम करता है ना तो इसको कहते हैं जिहाद का, ठीक है। और इसके लिए मुजाहिदे का लफ्ज भी वही माने में आया। ओहो, ये तो रह गया। हाँ, माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल जरा से निकल गया, चले कम से कम इसको कहीं नोट कर लेते हैं, 1 मिनट आ जाइए, नोट करने का भी इंतजाम हो गया, ठीक है। वो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि उम्मत और मिल्लत का फर्क बताना था, तो देखते हैं अगर आज की क्लास में मुमकिन हो सका वरना तो मुझे किसी टेक्स्ट को रेफर करना था इसके लिए, ठीक है। तो उस वजह से आज वो जहन से निकल गया था। अच्छा, तो जाहिदू के अंदर फिर मुजाहिदा और जिहाद का लफ्ज, कुफार के साथ कताल में भी मुसलमान अपने कौलो फेल और हर तरह की इम्कानी ताकत खर्च करते हैं, इसलिए इसको भी जिहाद कहा जाता है, ठीक है। यानी असल में तो वो होता है किताल, किताल का मतलब है कि बाकायदा मुक्के मारना, राइट, या जो है वो लाते मारना, या जो है वो हाथ में अगर तलवार है तो तलवार मारना, या तीर है या नेजा है या बंदूक है या मिसाइल है या जो कुछ भी है, तो ये सारी चीजों के जो है ना वो बाकायदा कत्ल, कत्लो गारत गरी, किताल, लड़ाई, राइट, ये सब असल में तो किताल का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है। जिहाद का लफ्ज उसके लिए क्यों इस्तेमाल कर लिया जाता है, वो इसलिए कि उसके अंदर ये दोनों चीजें भी शामिल होती हैं। जाहिर सी बात है, इसके बगैर तो आप लड़ाई कर नहीं सकते, कि पूरी ताकत खर्च करना, वरना भाई अगला बंदा मार देगा। अगर आपने जो है वो थोड़ी सी ताकत खर्च करी दुश्मन से कताल करने में, तो क्या होगा, दुश्मन आपके ऊपर गालिब आ जाएगा और फिर वो आपको जिंदा कोई थोड़ी छोड़ेगा। इस वजह से कताल के अंदर सबसे ज्यादा ताकत अपनी लगानी पड़ती है। बाकी तो कामों के अंदर हम सुस्ती कर जाते हैं, ठीक है, कि भाई पूरी ताकत नहीं लगाई, पूरे जो है ना वो मुजाहिदे के साथ जो है वो इल्मी जिहाद नहीं किया, या जो है वो जुबानी जिहाद पूरी मेहनत करके नहीं किया, लेकिन जब सामने वो बंदूखा के साथ खड़ा होता है तो फिर उसके साथ थोड़ी ये वाली कोई ये रिस्क नहीं रह सकता ना फिर उसके बाद। और फिर जाहिर है कि इस रास्ते में कितनी आगे से उसने मारा नहीं तो कम से कम जख्म तो लगा सकता है, खून निकल सकता है, और ना जाने क्या क्या कुछ हो सकता है। तो इस वजह से किताल के लिए भी जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और ये यानी 100% जो है वो उसके ऊपर फिट होता है। वह हक का जिहाद से मुराद उसमें पूरा इखलास अल्लाह के लिए होना है, जिसमें किसी दुनियावी नामो नमूद या माले गनीमत की तमाह का शाएबा ना हो। ठीक है, यानी हक का जिहाद ही का मतलब कि इखलास नियत के साथ हो जिहाद, ठीक है। और जैसे कि हर तरह के हर जगह की एक एक वो होती है ना थीम होता है, एक मिनट होल्ड होल्ड कीजिएगा इसको।
Recording in progress.
तो बाकी ये कि भाई हर जगह का एक मिजाज भी होता है, थीम भी होता है। तो हमारा थीम तो ये है ना कि हम अपने जो हालात चल रहे हैं, मतलब अपने इस मुराद साजिश के अपने हालात ही हैं, क्योंकि अल मरउ यकीस अला नफसी, हर बंदा जो है ना वो अपने ऊपर ही कयास करता है, तो अपने अंदर की बुराइयां हैं, तो इस वजह से जो है वो आप लोगों को हर वक्त जो है वो सुनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये जो हक का जिहाद ही का मतलब क्या आजकल के एतबार से, चले आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, हमारे तो चूंकि बुराइयां हैं हमारे अंदर बहुत ज्यादा, तो इस वजह से अपने ऊपर कयास करते हुए आपको जो है वो सुनाते रहते हैं, लेकिन आपको भी कोई नजर आती है। तो अगर आपसे पूछें कि आज के जमाने के हिसाब से हक का जिहाद ही का क्या मतलब होगा, तो क्या फरमाते हैं आप इसके बारे में? जी, जब तक जो है वो किसी का लंबा सा एक मैसेज आया हुआ है डायरेक्ट में, डायरेक्ट मैसेज में, तो उसको पढ़ लेता है यार। नहीं, हक का जिहाद ही पूछ रहा हूँ, नफ्स का जिहाद नहीं पूछ रहा। जिस तरह अपने इल्मी आपने इल्मी इख्तिलाफ का बताया, हर मसले में ऐसे औरत का तरावी पढ़ना घर में या मस्जिद में इसका भी बता दें, जैसे यहाँ के ऐसे में लेडीज तरावी पढ़ने जाती हैं क्योंकि उनका मसलक अलग है, मगर इंडियन पाकिस्तानी भी जाती हैं, ये सही है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक औरत की तरावी पढ़ना मस्जिद में सही है? औरत का तरावी पढ़ना मस्जिद में सही है, या तरावी ज्यादा अहम है कि फर्ज नमाज ज्यादा अहम है? राइट, और फर्ज नमाज के बारे में मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने के बारे में आपने तो सुना होगा ना, अभी क्लास में भी बात हुई थी और उससे पहले भी कई दफा बात हो चुकी है। ठीक है, तो फर्ज नमाज मस्जिद में जाके पढ़ना, वो तरावी तो छोड़ दें, तरावी तो बहुत, तरावी तो यानी एक सुन्नत है, ठीक है, जो कि हमने फर्ज बना ली है, लेकिन वो सुन्नत ही है। और सुन्नत का मतलब जो है ना वो सिर्फ ये नहीं होता कि एक एक ही खास तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है, बहरहाल। लेकिन तरावी ये जो फर्ज नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ना, ठीक है, इसके बारे में क्या क्या आपको बताया था पिछली क्लास में, कि इमाम अबू हनीफा तो बहुत बाद के हैं, किन्होंने इसके खिलाफ फतवा दिया कि औरतें नहीं जा करके नमाज पढ़ें मस्जिद के अंदर? ठीक है, किन्होंने क्या फतवा दिया उसके बारे में जी बताएं ना। और जो असल सवाल है, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है ना, और किसने मुवाफ़क़त करी? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना औरत का, ये भी याद रखें, फुकहा ने इसके ऊपर भी लिखा है ہے نا، تفصیل یعنی جو اصل تاریخ ہے وہ کیا لکھا ہے، کہ مدینہ منورہ میں صرف ایک مسجد نبوی نہیں تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور بھی مسجدیں تھیں، ٹھیک ہے، اور بھی مسجدیں تھیں، لیکن عورتیں صرف مسجد نبوی میں جا کر کے نماز پڑھتی تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صرف مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے عورتیں جاتی تھیں، دوسری مسجدوں میں نہیں جاتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے مسجد نبوی کے اندر، رائٹ، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، جو کہ نبی کی زیارت ہے بھائی، رائٹ، علم حاصل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، اس کے لیے صرف مسجد نبوی میں جایا کرتی تھی، دوسری مسجدوں میں کی تھوڑی، کہ مطلب ہاں بھی مسجد جانا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے، تو چلو بھی جس کے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں پہ چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نہیں، صرف مسجد نبوی میں عورتیں جایا کرتی تھیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے تو مسجد جانے کی ایک حجت، ایک ریزن کیا تھا عورتوں کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں، اور دوسری چیز کیا کہ جو باہر نکلنے کا ایک معاملہ تھا، ٹھیک ہے نا، مردوں کے درمیان سے گزر کر کے اور باہر سے بھی مرد آ رہے ہیں مدینہ منورہ میں، اب صرف جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ کوئی تھوڑی تھے، باہر سے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے تھے مدینہ منورہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور باہر سے عورتیں بھی آنا شروع ہو گئی تھیں، تو اب جو ہے نا وہ والا بھی عنصر کہ جی یہ اب جو ہے فتنے کا اندیشہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، فتنے کا اندیشہ ہے، تو اس وجہ سے اب عورتوں کا مسجد نبوی میں آنا بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، صحابہ کے دور کے اندر، ٹھیک ہے، تو اب اس والے عمل کو آج کے دور کے اندر جہاں پہ نہ مسجد نبوی ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، نہ جو ہے وہ کوئی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ اور جو ہے وہ صحبت یافتہ موجود ہیں، اور جو ہے نا اس کو لے کر کے نہیں جی عورت مسجد، عورت مسجد، عورت مسجد، ایک رٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی کچھ عقل شریف اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو استعمال بھی کر لینا چاہیے نا، ٹھیک ہے، علم اور عقل مل کر کے پھر بات بنتی ہے، تو خیر یہ تراوی کا کوئی کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے اس کے اندر، بھائی خصوصاً جب ایک حکم بھی موجود ہے قرآن مجید کے اندر، حکم جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، پھر اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ ہے نا، پکی ٹھکی جو کہ ایون ہر جگہ اس کو کوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے درمیان کوئی صحت وحت کا اختلاف نہیں ہے، کہ عورت کی نماز کی جو عورت کی جو نماز کا ثواب ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ آ کر کے نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے، بہت دل چاہتا ہے، لیکن تمہاری نماز کا زیادہ ثواب جو ہے وہ تمہارے گھر کے اندر ہے، اور تمہارے گھر کے اندر بھی جو گھر کا جو اندرونی جگہ ہے نا، سب سے کونے والی جو جگہ، وہاں پر نماز پڑھنا جو ہے وہ عورت کے لیے زیادہ ثواب کا، رائٹ، تو اب ہم کیوں جا رہے ہیں بھائی نماز پڑھنے کے لیے، رائٹ، عورتیں کیوں جا رہی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کس وجہ سے؟ وہی بات ہو گئی نا جو ابھی دو دن پہلے ہوئی تھی کہ جی حیض میں مجھے بڑا دل چاہتا ہے، میں اللہ کے بڑے قریب ہوتی ہوں، تو اس وجہ سے میں حیض میں بھی نماز پڑھوں گی، میں نفاس میں بھی نماز پڑھوں گی، میرے پروردگار کے ساتھ مجھے بڑا قرب نصیب ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے، میں تو پڑھوں گی، ٹھیک ہے، تو بھائی اب حیض نفاس کا معاملہ جو ہے وہ ذرا الحمدللہ ابھی تک چل رہا ہے عورتوں کے اندر کہ بھائی نہیں اس کے اندر نماز نہیں پڑھنی، تو اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی شور نہیں اٹھاتا، کل کو جو ہے وہ آپ کی عورت مارچ جو ہے وہ یہ بھی شروع ہو جائے گا، نہیں میرے اور میرے اللہ کے یہ عورت مارچ والے اللہ کا کو تھوڑی ڈینائی کرتے ہیں، رائٹ، عورت مارچ والی جو ہے وہ اللہ کو ڈینائی کرتی ہیں کہ نہیں اللہ کوئی چیز نہیں ہوتا، سب ایتھیسٹ ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو اللہ اور ان کے درمیان جو یہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے ساتھ مسئلہ ہے، مولوی صاحب جو ہے وہ صحابہ سب سے پہلے مولوی صاحب تھے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے درجے دوسری جو جنریشن آئی وہ دوسرے مولوی صاحب تھے، تیسری جنریشن تیسرے مولوی صاحب تھی، لیکن یہ سارے کے سارے مولوی تو ہوتے ہیں جو کہ اللہ اور ہمارے درمیان نعوذ باللہ حائل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بھائی حائل نہیں ہو رہے ہوتے، وہ تو حائل نہیں ہو رہے ہوتے، ہم نے شیطان نے ہمیں یہ بنا دیا کہ وہ حائل ہو رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ مسجد سے روک رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ نماز سے روک رہے ہیں، ہمیں تلاوت سے روک رہے ہیں، تلاوت کا تو معاملہ ہو گیا ختم، یہاں بھی اب آپ حیض میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، तो कल को जो है वो हैज के अंदर नमाज पढ़ने का भी कहीं से आ जाएगा। क्यों, आजकल ये मुमकिन नहीं है क्या? क्या मुश्किल है आजकल ये काम होना? यूट्यूब के ऊपर कोई आकर के बैठ के बोलना शुरू हो जाए, अपनी तरफ से जो है वो एक दो चार किस्म की अकली किस्म की दलीलें ले आए, सुनने वाले हजारों हजारों उसको सुनना शुरू कर देंगे और हजारों उसको मानना भी शुरू कर देंगे और हैज में नमाज शुरू हो जाएगी उसके बाद। क्या मसला है इसके अंदर? ठीक है ना, तो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना या जो है वो हैज की हालत में तिलावत करना या हैज की हालत में नमाज पढ़ना, ये सब जो है ना, ये शैतान कहीं पे रुकता नहीं है। ये नहीं कि हाँ भाई एक मसला उसने करवा दिया, अब उसके बाद वो आइंदा ये वाली हरकत नहीं करेगा, नहीं, वो तो आगे बढ़ता है उसके बाद, वो तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेकर के आता है ना। ठीक है ना, ईद की नमाज के बारे में क्या है बता दें भाई, घर से बाहर निकलना और ईद की नमाज के अंदर तो अल्लाह रहम करे तरावी में तो शायद बुरका पहन करके आ जाए, आपने आपने नमूने नहीं देखे शायद, राइट? ईद की नमाज के अंदर तो बाकायदा ईद मनाने के लिए आ रहे होते हैं सारे के सारे, और वो ईद के अंदर जो है ना फिर वो नहा धो करके सबसे बेहतरीन कपड़े पहन करके, ठीक है? तो भाई बस वही बात है, अपने नफ्स की माननी है और अल्लाह की नहीं माननी। ठीक है, मस्जिद में दाखिल होना भी अब जायज कहते हैं। हाँ जी, दाखिल होने के ऊपर तो जवाज का फतवा आ गया ना कहीं से, ठीक है, तो अब जो है वो कल को नमाज भी पढ़ेंगे हैज की हालत में। पाकिस्तान में बाज लोग घरों में तरावी का एहतमाम करते हैं, औरतों के लिए पर्दे में एक अलग कमरे में स्पीकर लगा कर के जमात के साथ नमाज पढ़ती हैं, क्या ये दुरुस्त है? अगर वो किसी फकीह और किसी फितनों से अच्छी तरह वाकिफ जो मशायख होते हैं ना, उनके कहने के ऊपर अगर अगर उनकी इजाजत से ये काम कर रही है ना, तो फिर तो ये ठीक होगा। ठीक है कि घरों में तरावी का एहतमाम करते हैं, औरतों के लिए पर्दे में एक अलग कमरे में स्पीकर लगा कर जमात के साथ वो नमाज पढ़ती हैं। भाई जमात के साथ नमाज पढ़ना तरावी की इसका मसला नहीं है, मसला जो है वो दूसरे मसले हैं ये, ठीक है ना, कि घर में नहीं बैठना है, बाहर जाना है, ठीक है ना, घर की जिम्मेदारियों को छोड़ना है और जो है वो जा करके वो अपने मजे हासिल करने हैं, तिलावत सुनने का शौक। भाई इसके ऊपर तो फुकहा ने ये भी कहा कि ये जो मर्दों की तिलावत सुनने का शौक जो है वो मर्द औरतों को जो हुआ है, ठीक है ना, तो ये माशाल्लाह ये कुरान के लिए हुआ होता है या बहुत से ऐसे भी मामलात हैं, है ना, कि वो जिन कारिया के ऊपर दिल आ गया तो वो कुरान तो रह गया बीच में, राइट, लेकिन वो कारी साहब जो है ना उनकी वो उनकी आवाज जो है वो ज्यादा अच्छी लगनी शुरू हो गई। ठीक है, तो भाई दीन जो है ना वो सुपुर्दगी का नाम है, दीन सबमिशन का नाम है, दीन अपने जो है ना वो मन मर्जी और अपनी चाहते और अपनी जो है ना वो शौक पूरे करने का नाम है ही नहीं ना। ठीक है, तो हमने बनाया हुआ है इसको अब अपना एक नफली दीन बनाया हुआ ना पूरा का पूरा, जिसके सारे मसले हो रहे हैं। तो खैर, आपका ये सवाल था, मैं इस आजिस का क्या सवाल था वो किसी को याद है कि हमारी थीम के मुताबिक जाहिदु फिल्लाही हक का जिहादी का मतलब क्या? अभी भी उस थीम का जिक्र हो गया है वैसे, कि हक का जिहाद ही का मतलब ये है कि अपनी मन मर्जी से जिहाद ना शुरू कर देना, या अपनी मन मर्जी से जो है ना वो जिहाद की चाहत हो जाए, और जो है वो चूंकि मुफ्ती साहब और मुफ्ती आजम साहब और शेखुल इस्लाम साहब जो है वो जिहाद का फतवा नहीं दे रहे, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि जिहाद होना चाहिए था, मेरा तो ख्याल है कि बस अब तो वक्त आ चुका है जिहाद होने का, वो क्यों ही फतवा दे रहे जिहाद होने का? तो अब इसका मतलब ये है कि मुफ्ती साहब जो है ना वो तो या तो नाउज बिल्ला डरपोक हैं, या जो है वो नाउज बिल्ला वो जो है वो मफाद परस्त हो चुके हैं, या जो है वो काफिरों और बातिलों बातिल तागूत के साथ मिल चुके हैं, तागूत के साथ मिल चुके हैं, इसी वजह से तो वो जिहाद का फतवा नहीं दे रहे, जबकि मैं तो समझता हूँ कि जी जिहाद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अब इस तरह से करते करते बिलाखिर जो है वन साहब ने जिहाद शुरू कर दिया, तो ये हक का जिहाद ही नहीं हो, जिहाद ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म पे जिहाद नहीं हो रहा, ये जो है ना वो अपने नफ्स की ख्वाहिश और अपने अकल की बुनियाद के ऊपर जिहाद हो रहा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला तो क्या हुक्म है? जाहिदु फिल्लाही हक का जिहादी, जैसा कि जिहाद करने का हक है, यानी जैसा कि जिहाद अल्लाह की तरफ से, एक्सक्यूज मी, जैसा कि जिहाद अल्लाह की तरफ से वाजिब हुआ है, राइट, और इसका हुक्म जो है वो नबी के वास्ते से आएगा, जब नबी दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो नबी के वारिस के वास्ते से इसका हुक्म आएगा, तब जिहाद होगा हक का जिहादी वाला। और अगर इसके खिलाफ जो है वो चंद है ना जोशीले और जज्बाती नौजवानों ने खड़े होकर के जो है वो सो कॉल्ड ताबूत के सामने जिहाद शुरू कर दिया, तो ये हक का जिहाद ही नहीं होगा। ठीक है। only related to challenges and matters required. چلیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کا جہاد یہ ہے کہ جہاد میں اپنی پوری طاقت خرچ کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر کان نہ لگائے. کیا مطلب؟ کہ جب اوپر سے حکم آ جائے کہ جہاد کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ملامت کی فکر نہ کرے, ٹھیک ہے نا؟ اگر لوگ کیا کہیں گے, پاگل کہیں گے, دیوانہ کہیں گے, دنیا سے ہٹ کر کے اپنی ایک نئی جو ہے وہ طریقہ اختیار کرنے والا کہیں گے, یا جو ہے وہ ماریں گے پیٹیں گے, نہیں. جب اوپر سے حکم آ گیا تو اس کے بعد پوری طاقت خرچ کر کے اور ملامت کرنے والی کی ملامت کی فکر نہ کر کے جہاد کرے, ٹھیک ہے؟ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ جہاد کے معنی عام عبادات اور احکام الہیہ کی تعمیل میں اپنی پوری طاقت پورے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کے لیے ہیں. ہاں, تو جہاد کے معنی عام عبادات اور احکام الہیہ, یعنی اللہ کا حکم, ہر قسم کا اللہ کا حکم, چاہے وہ نماز پڑھنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے, زکات دینے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے, حج کرنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے, یا جو ہے وہ قتال کرنے کا حکم آ گیا اللہ کی طرف سے. کیسے آتا ہے اللہ کی طرف سے حکم؟ آواز تو نہیں آتی نا, تو پھر یعنی فتویٰ آ گیا قتال کرنے کا, ٹھیک ہے نا؟ تو نماز ہو, زکات ہو, روزہ ہو, حج ہو, جو بھی ہو اللہ کا حکم, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر پورے اخلاص کے ساتھ اپنی طاقت کو خرچ کرنا, ایک احکامات الہیہ کے لیے, ٹھیک ہے, جن کو کہ فرائض و واجبات کہا جاتا ہے, فرائض و واجبات جن کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم کسی کو افطار کے لیے دعوت دے دیں تو کیا نیت ہونی چاہیے؟ کسی کو افطار کے لیے دعوت دے دیں تو کیا نیت ہونی چاہیے؟ پہلی نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ دکھاوے کا کام نہیں کرنا. سب سے پہلے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور سنت طریقے کے اوپر ہم نے افطار پارٹی کرنی ہے. ہم نے دکھاوے کے لیے, ہم نے جو ہے وہ اپنی ناک بچانے کے لیے بھی تو افطار پارٹی کی جا رہی ہوتی ہے نا بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا, اگر نہیں کری تو لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے, تو یہ ناک بچانے کے لیے میں افطار پارٹی نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. اور پہلے تو نیگیٹوز کا خاتمہ کریں, نیگیٹوز کا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر پازیٹو کی بات پر آئیں کہ اب پھر میں کس نیت سے کروں بھائی, یعنی آپ نے تو ساری نیتیں ختم کر دی, مسئلہ ہی ہو گیا یہ, تو اب ہم کس نیت سے افطار پہ بلائیں, ٹھیک ہے نا بھائی, پہلے تو نیتوں کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور پہلے منفی کا تدارک کرنا ہوتا ہے, منفی کا تدارک, ٹھیک ہے نا, ہم منفی کا تدارک نہیں کرتے, ہم منفی کو کٹ کرنے کے بغیر ہی مثبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. دل میں جو ہے نا وہ اندر سے تو ہو رہی ہے ناک بچانی ہے, اندر سے ہو رہی ہے کہ جو ہے نا وہ ذرا پارٹی شارٹی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اوپر سے بس ظاہری طور پر نیت کیا کر رہے ہیں, وہ حدیث میں ہے نا کہ جی کسی روزے دار کو افطار کرانے سے جو ہے وہ بڑا ثواب ملتا ہے, اور تم جو ہے وہ افطار کرا دو کسی کو, میں تو اس وجہ سے افطار پارٹی کر رہی ہوں بھائی, یہ اوپر کی نیت نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کو اندر کا پتہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اوپر والی چیز کی ہم دھوکہ نہیں دے سکتے, اوپر والی نیت سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, اللہ تعالیٰ کو تو اندر کا پتہ ہے کیوں کر رہی ہے یہ, ٹھیک ہے. تو جب آپ منفی کا نیگیٹو کا خاتمہ کر لیں نا اپنے دل میں سے, تو اس کے بعد پھر پازیٹو کی نیت یہ کر لیں کہ ہاں بھائی ایک روزے دار کو افطار کرا رہی ہوں, چاہے بے شک وہ غریب نہیں بھی تھا, بھوکا نہیں تھا, میں اگر نہیں بھی کرا دی تو اس کے گھر میں الحمدللہ بہت کچھ تھا کھانے کے لیے, ٹھیک ہے. اور یہ کہ دوسری آپ نیت یہ کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اس طرح سے جو ہے وہ مل بیٹھ کر کے جو ہے نا وہ کوئی دین کی بات, کوئی جو ہے وہ ترغیبی بات, میں اس بہانے ان کو درس قرآن سے جوڑنے کی کوشش کروں, ٹھیک ہے. ویسے تو رمضان المبارک میں سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جو اس کو اوکیزن بنایا ہوا نا, سیلیبریشن کا جو مہینہ بنایا ہوا نا, یہ سیلیبریشن کا مہینہ ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے نا, یہ رہنے ہی دیں ابھی رمضان المبارک کے اندر, یہ رمضان کے بعد کر لیں. اس رمضان المبارک میں جن لوگوں نے عبادت کرنی ہوتی ہے اور جن لوگوں نے जो करने का काम है वो करना होता है ना, उनके पास अवतार पार्टियों का टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता उनके पास अवतार पार्टियों का। इसमें तो जिनका स्केड्यूल नहीं भी होता ना रमजान मुबारक में, उनका भी स्केड्यूल बन जाता है, और जब स्केड्यूल बन जाता है तो फिर बीच में ये इस किस्म की जो हमने कोने कुदरे के अंदर पार्टियां दाखिल करी हुई होती है ना, इनकी गुंजाइश नहीं निकल सकती। हाँ अगर आप करेंगे तो पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है वो खराब हो जाता है। सेरी करनी होती है भाई, नींद को भी पूरा करना हम कमजोरों के लिए जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो किसी का शुगर हाई हो रहा होगा, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा, किसी को जो है वो दूसरे कोई किसी काम करने के काबिल नहीं रहेगा। तो हमारी बहुत सारी कमजोरियां हैं, इस वजह से हमें नींद का भी एहतमाम करना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद नमाजें पढ़नी है, फिर तिलावत करनी है, फिर ये वाली क्लास लेनी है, जैसे कि कुरान सीखना भी तो है ना, खाली तिलावत करना तो नहीं। ठीक है, तो इस महीने में कितने सारे लोग माशाल्लाह के कुरान सीखना शुरू कर देते हैं, अगले जब रमजान खत्म होगा सारे के सारे जो है वो गायब हो जाएंगे अल्लाह माशाल्लाह चंद होके। तो रमजान मुबारक के अंदर इन चीजों के बाद फिर अफ्तार पार्टियों की गुंजाइश नहीं रहती। सवाब हासिल करना है तो किसी गरीब जगह के ऊपर जो है ना वो या तो अफ्तार पहुंचवा दें, ठीक है, या ये जो है ना वो पैसा पहुंचवा दें ताकि वहां पे दो लोग अफ्तार का इंतजाम कर रहे हैं सही मानों में गरीब लोगों के लिए, तो वहां पे इंतजाम हो जाए। नीयत को ठीक करना, अगर पहले वो नीयत नहीं थी तो अब कर सकते हैं। भाई माजी में तो हो गई, वो गुनाह हो गया, गलत नीयत के साथ आपने कोई काम कर लिया, तो अब तो गुनाह के ऊपर तौबा करनी होती है और आगे जो है वो ना करने का इरादा करना होता है। सीधी सी बात है, हम लोग कर कुछ खत्म कर दिया है, हम लोग हर कुछ खत्म कर दिया है, कोशिश ज्यादा से ज्यादा नेकी और अल्लाह को राजी करने की है, पर ये सब भी हो जाता है। हाँ खत्म भी कर दिया और हो भी जाता है, ठीक है ना, तो अब या तो खत्म हो गया या हो जाता है, इन दोनों के दरमियान वाली कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना, कि खत्म भी कर दिया और हो भी जाता है। भाई नहीं खत्म किया अभी तक, जब भी तो हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जरा इस्तेकामत और जरा साबित कदमी की जरूरत पड़ती है ना, ताकि वाकई खत्म हो जाए। ये बहाने के नहीं, कर भी दिया है फिर भी हो जाता है, और जो कर रहे होते हैं तो उनको ना करना होता है। ये लर्न टू से नो सीखना पड़ता है, ये ना करना जो है ना ये सीखना पड़ता है लोगों को, ठीक है, और अगर ना करना नहीं सीखा ना आपने तो फिर आप खुद तो खत्म करने की कोशिश करती रहेंगी, आगे से जो है ना बंदा हाथ पकड़ पकड़ के आपको खींचता रहेगा उसकी तरफ, ठीक है ना, तो खत्म कभी भी नहीं होगा क्योंकि आपने नो कहना नहीं सीखा। अल्लाह की खातिर नो कहना भी सीख लें कभी, ठीक है, दूसरी चीजों के लिए तो हमें नो करना आता है, जिसमें हमारा नफ्स जो है ना वो मुखालिफ हो रहा होता है और हमारी ख्वाहिशात टूट रही होती है, हम बिला तकल्लुफ नो कहते हैं उसमें। उस वक्त कोई हमें लोगों के जज्बात को हर्ट करना और फलाना ढिमकाने किस्म के जो है ना हमारे पास कोई उस वक्त रीजन नहीं आता कि नहीं उसका क्या बनेगा, मैं नो नहीं कह सकती, भाई मेरी ख्वाहिश टूट रही है, मेरा फलाना नुहार जो रहा है, तो मैं नो कैसे ना कहूँ। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की खातिर और दीन की खातिर नो कहना है ना, वो तो अल्लाह की टूटती हो ख्वाहिश तो क्या हो गया, वो नाउज बिल्ला टूटने वाली चीज थी टूट गई, रसूल की ख्वाहिश टूटती है कोई बात नहीं, रसूल की तो टूटने वाली ख्वाहिश थी टूट गई, राइट, तो उस मामले में हम नो नहीं कह सकते ना किसी को, ठीक है। बहरहाल तो आगे फरमाते हैं कि ज़हाक और मुकातल ने फरमाया, या मुकातल है उन्हें, कि मुराद आयत की ये है कि इअमलुल्लाह हक अमलिही वअबुदु हक इबादतिही, यानी अमल करो अल्लाह के लिए जैसा कि उसका हक है और इबादत करो अल्लाह की जैसा कि उसका हक है, ठीक है। वमा कदरुल्लाह हक का कदर ही के तहत तफसील से इसके ऊपर बात हो चुकी है, और अभी भी जिहाद के बारे में भी बात हो चुकी है, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि यहाँ जिहाद से मुराद अपने नफ्स और उसकी बेजा ख्वाहिशात के मुकाबले में जिहाद करना है, और यही हक है जिहाद है, ठीक है। नफ्स की बेजा ख्वाहिशात क्या होती हैं, नफ्स है क्या, नफ्स जो है ना वो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक एक सलाहियत पैदा करी है, जिसको अंग्रेजी में फैकल्टी के लफ्ज से ताबीर किया जा सकता है, यानी एक यानी ये कोई 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 कोई, कोई मादी चीज नहीं है, कोई इसका जिस्म नहीं होता नफ्स का, ठीक है। तो नफ्स जो है वो बस एक रूहानी दुनिया की और मादी दुनिया के दरमियान की कोई एक चीज है, ठीक है, हमारे अंदर, तो उसमें ना अल्लाह ताला ने ये चीज रखी है या उसकी ये सिफत रखी है कि ये अपनी ख्वाहिशात चाहता है, इसके अंदर ख्वाहिशात, ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं उससे बात नहीं करना चाहती, मुझे उसी से बात करनी है, मुझे उसी के साथ वक्त गुजारना है, और मुझे जो है वो ऐसे होना चाहिए और वैसे होना चाहिए। ये ख्वाहिशात है सारी की सारी। ये ख्वाहिशात कहाँ से स्टेम करती हैं इंसान के अंदर? ये इस जगह का नाम नफ्स है। कुरान मजीद में इसका तस्करा है। तीनों, अच्छा इसकी तीन हालतें होती हैं, तीनों हालतों का कुरान के अंदर, कुरान मजीद के अंदर तस्करा है ना। इन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, ठीक है, कि इंसान के जो नफ्स है ना वो तो बुराई की तरफ दावत देता है। इल्ला मा रहिम रब्बी, सवाए उसके के अल्लाह ताला ने जिसके ऊपर रहम किया और उसने जो है वो अपने नफ्स की इस्लाह की मेहनत शुरू कर दी। तो नफ्स की जब इस्लाह की मेहनत शुरू करता है तो फिर वो नफ्स से, अम्मारा से फिर वो बेहतर हो जाता है, और वो नफ्स लवामा की कैफियत में आ जाता है, उस हालत में आ जाता है। नफ्स लवामा का ला उकसुमु बियौमिल क़ियामा वला उकसुमु बिन नफ्स लवामा, ठीक है। तो सूरह क़यामत के अंदर नफ्स लवामा को भी अल्लाह ताला ने तस्करा किया। बाकी तफसील जो है वो मुफस्सिरीन ने और मशायख ने इसको खोल के बताया कि नफ्स लवामा क्या होता है। नफ्स लवामा जो कि मलामत करता है, अगर गुनाह कर देता है इंसान तो उसके ऊपर मलामत भी करता है, यानी अभी जरा कमजोर नफ्स है ये, ठीक है ना। ये कुल्ली तौर पर अभी गुनाह से नहीं बच पाता बल्कि इससे गुनाह हो जाता है, यानी इसके अंदर अभी भी गुनाहों की ख्वाहिशात मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ इतना इल्म इसके पास आ गया है कि गुनाह अच्छी चीज नहीं थी, मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। हो गया क्योंकि कमजोर हूं, हो गया शैतान के जो है वो बहकावे में अपने आप को नहीं रोक सका, तो मलामत। तो ये जो हालत होती है नफ्स की, इसको नफ्स लवामा कहते हैं। लेकिन जो शख्स मजीद मेहनत करता रहता है, नफ्स के तजकिए की मेहनत जैसा कि करने का हक है, जैसा कि करने का तरीका है, वैसे वो करता रहता है, यानी जैसे आगे आ रहा है शेख की सुपुर्दगी के साथ, शेख की गाइडेंस के साथ, रहनुमाई के साथ, ठीक है ना, वो उनके बताए हुए जो तौर तरीके होते हैं उनके मुताबिक, तो उसका नफ्स लवामा जो है वो मजीद तरक्की करता है, यानी मजीद बेहतरी आती है और वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतन मरज़िया, ठीक है ना, कि ये जो नफ्स मुतमइन्ना होता है ना, इन्ना नहीं है, इन्ना है, हमजा के साथ आपने इन्ना लिख दिया यहाँ पे। तो नफ्स मुतमइन्ना जो है ना, ये ऐसा हो जाता है कि फिर अल्लाह ताला ना फिर ऐसे बंदे को जिसके अंदर नफ्स मुतमइन्ना पैदा हो चुका होता है, तो वो इरजई इला रब्बिक, है ना, आ जाओ अपने रब की तरफ, आ जा आ जा, मौलाना तकी तारिक जमीन साहब, आ जा आ जा, ठीक है, तो आ जाओ अपने रब की तरफ, और राजियतम मरजिया, है ना, इस हालत में कि तुम अल्लाह से राजी हो और तुमसे अल्लाह ताला राजी है। फतखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, यानी मेरे वो बंदे तुमसे पहले आ चुके हैं जिनका नफ्स मुतमइन्ना बन चुका था, उदखुली फी इबादी फतखुली जन्नती, और मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। तो नफ्स मुतमइन्ना का तो ये मामला है कि बस अभी आंख बंद हुई और चलो जी चलो जन्नत में आ जाओ आ जाओ, ठीक है ना, तुम्हारी कब्र को भी जन्नत का बाग बना देंगे, और उसके बाद हशर में भी जो है वो अर्श का साया, और उसके बाद जो है वो खुले सरात के ऊपर दौड़ते हुए आ जाना अंदर जन्नत के, ठीक है। तो ये किसको? नफ्स मुतमइन्ना वाले को, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, अपने ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है, और जो है वो बात माननी पड़ती है, शरीयत की बात माननी पड़ती है। अतीउल्लाह व अतीउर्रसूली व उलिल अम्र मिनकुम, और रसूल की और उलिल अम्र की बात माननी पड़ती है, ठीक है। तो इससे फिर ना नफ्स जो है वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। नफ्स मुतमइन्ना से किसी ने सवाल किया है कि नफ्स मुतमइन्ना से गुनाह नहीं होते या गुनाह का ख्याल नहीं आता। नफ्स मुतमइन्ना का मतलब ये होता है कि ये नफ्स जो है ना, जो कि ख्वाहिशात की जगह है, ठीक है ना, ख्वाहिशात इसमें से स्टेम होती हैं। तो असल में मतलब ये होता है नफ्स मुतमइन्ना हासिल हो जाने का, कि ये नफ्स मुतमइन्ना कमजोर, यानी नफ्स की वो हालत है कि जिसके अंदर नफ्स इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि इसके अंदर जो गुनाह की ख्वाहिश पैदा हो रही है ना अभी भी, ठीक है ना, इस ख्वाहिश से कुछ होता नहीं है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता इस ख्वाहिश से, पैदा होती रहो। जैसे मिसाल के तौर पर आपके घर के अंदर कोई कोई क्या कहते हैं, बच्चा हो छोटा सा, या कोई ऐसी खादिम हो, कोई गुलाम हो, कोई बांदी हो, राइट, तो वो कोने में बैठ करके जो है ना वो बोलता रहे कि मेरा ख्याल, मैं चाहती हूँ कि घर के अंदर जो है ना वो फलाना फानूस लगाना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि घर के अंदर ऐसे होना चाहिए, मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, वो बोलता रहे मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। क्या आप कोई फर्क पड़ता है कि वो उधर बैठा हो जाए, वो बोले चली जा रही है कि मुझे, मैं चाहती हूँ ऐसा होना चाहिए, मैं चाहती, भाई उसकी तो कोई हैसियत नहीं, वो तो कमजोर तरीन चीज है आपके घर के अंदर, तो वो बोलती रहे बेशक, लेकिन आपने उसकी सुननी कोई थोड़ी है। सुननी किसकी है कि जब घर की मालकन बोलेगी मैं चाहती हूँ कि घर के अंदर ना फानूस होना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि घर का निजाम ऐसे चलना चाहिए, है ना, ओहो ये तो ताकतवर है भाई, इनकी तो बात माननी पड़ेगी, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये मजबूत है, इनकी बात माननी पड़ेगी। वो कोने में बैठी हुई बोले चली जा रही है, उसको क्या होता है उसके बोलने से, यही है नफ्स मुतमइन्ना का मतलब, ये होता है कि नफ्स इतना कमजोर हो गया है कि अब वो ख्वाहिश भी करता है ना उसका, आप उसको सीरियसली लेते ही नहीं है, करता है बोलो, बोलते रहो, ठीक है। तो गुनाह के ख्याल नफ्स मुतमइन्ना के अंदर भी आता है, यानी वो तो उसका तो काम है, जो चिकनी चपड़ी चीज नजर आए उसकी तरफ जो है मायल हो जाना, जो जो है वो अच्छी खाने पीने की अच्छी सी चीज नजर आए उसकी तरफ जो है ना वो मायल हो जाना, है ना, जो अच्छे कपड़े लत्ते नजर आए उधर जो है वो, है ना, लेकिन दिल मजबूत है, कल्ब मजबूत है, और कल्ब जो है ना वो अल्लाह से जुड़ने वाली चीज है, कल्ब जो है ना वो वफादार है इंसान का, क्योंकि उसको पता है कि इस इंसान की भलाई अल्लाह की रजा पूरी करने में है, तो वो कल्ब जो है ना वो अल्लाह को राजी करने की बातें करता है। तो जब कल्ब मजबूत हो जाता है तो फिर कल्ब की मानी जाती है, नफ्स की नहीं मानी जा रही होती, ठीक है ना। तो नफ्स मुतमइन्ना उस कमजोर नफ्स को कहते हैं, नफ्स लवामा थोड़ा कमजोर हुआ है लेकिन ताकतवर भी है कि गुनाह करवा भी लेता है, ठीक है, अगरचे के कल्ब भी थोड़ा ताकतवर हो गया है। असल में नफ्स लवामा जो है ना वो मलामत नहीं कर रहा होता, असल में नफ्स लवामा तो गुनाह करवा रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम कल्ब इतना मजबूत हो चुका होता है कि वो मलामत करता है, और इतनी स्ट्रेंथ कल्ब में आ चुकी होती है कि ये जो इंसान है ना इसकी अकल कल्ब को भी सुनना शुरू कर देती है, अगरचे के नफ्स को भी सुन रही होती है लेकिन कल्ब को भी सुनना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये हालत है इंसान की जिसको के नफ्स लवामा वाली हालत कहते हैं। और आपने क्या लिखा कि गुनाह करने की ख्वाहिश नहीं रहती है, गुनाह करने की ख्वाहिश नहीं रहती है, या अगर थोड़ी बहुत रहती भी है तो उसकी तरफ इल्तफात नहीं होता। नफ्स मुतमइन्ना क्या हमेशा की स्टेट है, कभी लैप्स नहीं होता, नहीं, नफ्स मुतमइन्ना जिसको मिल जाता है ना वहां से फिर वापसी नहीं होती, जैसे कोई फल पक जाता है ना तो अब वो कच्चा नहीं हो सकता, जब कोई इंसान बालिग हो जाता है ना तो अब वो नाबालिग नहीं हो सकता, तो नफ्स मुतमइन्ना की हालत जब मिल जाए ना तो उसके बाद वो नफ्स लवामा की तरफ वापस नहीं लौट सकता, ठीक है ना। तो अगर वाकई मिल जाए, ये नहीं कि ऊपर से आपने किसी को देख करके कहना शुरू कर दिया हाँ इसको तो नफ्स मुतमइन्ना मिल गया है, अब कल को उन साहब ने गुनाह करना शुरू कर दिया या किसी स्कैंडल में फंस गए, पक्के पक्के कंफर्म फंसे हुए स्कैंडल के अंदर, मैंने कहा अच्छा इसका मतलब ये है कि इसका नफ्स मुतमइन्ना जो है ना ये तो वापस नफ्स लवामा की तरफ चला गया होगा या नफ्स अमारा की तरफ वापस चला गया होगा, नहीं, इसका इसका ये मतलब नहीं है कि वो वापस चला गया, इसका मतलब ये है कि आपने जो समझा हुआ था ना कि उसको नफ्स मुतमइन्ना मिल गया है वो उसको मिला नहीं था असल में अभी तक, ठीक है। हम उल्टा काम करते हैं, हमें अपने जजमेंट के ऊपर ज्यादा एतबार होता है कि मैंने जो जजमेंट करी थी इसके बारे में कि इसको नफ्स मुतमइन्ना मिल गया है ना तो मेरी जजमेंट सही थी, तो अब जो इसने गुनाह में मुबतला हो गया ना तो इसका मतलब यह है कि अब ये वापस चला गया उधर से, नहीं, आपकी जजमेंट गलत थी, अपनी जजमेंट के ऊपर हमें शक करने की जरूरत है, राइट, बजाय इसके के अपने बड़ों की बात के ऊपर शक करने की, ठीक है। और हमारे बड़ों ने क्या बताया कि नफ्स मुतमइन्ना के बाद कोई वापस नहीं जा सकता, ठीक है जी। चले और क्या फरमाते हैं हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के, इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह इस कौल की तायद में एक हदीस भी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से नकल की है कि एक मरतबा सहाबा इकराम की एक जमात जो जिहाद कुफार के लिए गई हुई यानी कताल के लिए गई हुई थी, ठीक है ना, वापस आई तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है, कदम तुम खैरा मुकद्दमिन मिनल जिहादी मिनल जिहादिल असगरी इलल जिहादिल अकबरी, काला मुजाहिदतुल अब्दी ले हवा, ठीक है, यानी कदम तुम, यानी तुम लोग लौट गए हो और बेहतरीन लौटना तुम्हारा हुआ है, ठीक है, खैरा मुकदमे, बड़ा अच्छे लौटे हो तुम लोग कताल करके अभी अभी काफिरों से ना, लेकिन अभी तुम जिहाद असगर से लौटे, अच्छा तो वो जिहाद किया तुमने, बड़ा जबरदस्त साबित कदमी के साथ उनके साथ मुकाबला किया जैसे तुम्हें करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो बहरहाल एक जिहाद असगर था, अब तुम आए हो जिहाद अकबर की तरफ, ठीक है, यानी तुम लोग खूब वापस आए छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ, यानी अपने नफ्स की ख्वाहिशात बेजा के मुकाबले का जिहाद अब भी जारी है, जिहाद खत्म नहीं हुआ। तुम मोमिन हो ना, मोमिन की जिंदगी में तो जिहाद खत्म कब होगा, जब मलकुल मौत आकर इसकी रूह को कब्ज कर लेंगे, उस वक्त इसका जिहाद खत्म होगा, मैदान जंग से निकलने के बाद जिहाद खत्म नहीं हो जाता। इस रिवायत को बैहकी ने रिवायत किया है मगर कहा है कि इसके इसनाद में ज़ौफ है, ठीक है ना, यानी ज़ईफ हदीस है, लेकिन यहाँ पे कोई वाजिब तो साबित नहीं कर रहे इससे, ठीक है ना, बस ये तो एक तरगीबी बात है, तो फजाइल वाली बात है, और ये पूरी दीन से साबित है कि मोमिन का जिहाद तो हर वक्त जारी रहता है, ठीक है ना, तो अगर हदीस वाकई ये साबित नहीं भी है, ज़ईफ हदीस है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि पूरा दीन ही जो है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, तो इसी बात के ऊपर फिर वो हमारे यहाँ काफी ये बात चलती रहती है, और बच्चों की क्लास में भी इसके ऊपर अभी काफी बात हुई है ना, क्या चीज के जिहाद असगर और जिहाद अकबर के ऊपर, एक और इंडिया में ज्यादा मशहूर ये मकूला होता है, राइट, इंडिया में जो हिंदुओं के साथ कभी कभार हो जाता है ना, जो पहले होता था, अब तो खैर नहीं हो रहा, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था कि कॉम्यूनल राइट्स और ये वो है, तो उसमें क्या था कि बिल्कुल एक शख्स जो है ना, जो सारी जिंदगी नमाज भी नहीं पढ़ता, कुछ उसको दीन का कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं है ना, बस हाँ भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, वो जा करके ऐसा लड़ता है, जा करके जो है वो शहीद हो जाता है माशाल्लाह, राइट, तो इसके ऊपर क्या फरमाते हैं कि सर कटाना जो है ना ये आसान होता है, सर झुकाना ज्यादा मुश्किल काम होता है। सर कटाने के लिए तो कोई ऐसा शख्स जिसने सारी जिंदगी सर नहीं झुकाया, राइट, अल्लाह के किसी हुक्म के सामने नहीं झुकाया, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के सामने सर नहीं झुकाया, अपने मशायख और उलमा के सामने कभी इसने सर नहीं झुकाया, अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारता रहा, लेकिन एकदम से जिसको कहते हैं ना वो क्या कहते हैं एड्रेनालाइन, राइट, एड्रेनालाइन रश, एकदम से एक जज्बा जिहाद और एकदम से जोश खरोश पैदा होता है और जाकर के सर कटा देता है, यानी लड़ना शुरू हो जाता है, कोई सर कटाने के लिए कोई थोड़ी जाता है कि जाओ हाँ जी मेरी गर्दन हाजिर है मार दो इस गर्दन को, नहीं, लड़ना शुरू हो, ये कोई इरादा करके नहीं गया था कि इसका सर कट जाएगा, ठीक है ना, लेकिन लड़ना शुरू हो गया, आगे से जो है वो गालिब आ गए, उन्होंने इसका सर ही काट दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको अंदाजा तो था ना कि मैं जा रहा हूँ इतने बड़े मॉब के साथ लड़ने के लिए, तो हो सकता है वापस ना आऊं, तो सर कटाने के लिए तो तैयार इंसान हो जाता है, ये नहीं कि बिल्कुल बेकार हो गया इसका, नहीं, शहादत उसको वाकई मिल गई क्योंकि ये मुसलमान था, अगर ईमान वाला था, ये नहीं कि पता चला ईमान वाला ही नहीं था ऐसे ही जाकर सर कटा के आ गया, फिर तो शहादत नहीं हुई, ठीक है ना, क्योंकि नाम मुसलमान का होता है और अगर जो है वो बुनियादी अकायद का इनकार करता है तो फिर वो नाम का मुसलमान फिर मुसलमान नहीं होता, ठीक है ना, तो उसका सर कटाना हरगिज शहादत नहीं होगा, लेकिन है मुसलमान, अकीदे इसके ठीक है, ठीक है ना, तो अब जो है ना इसका जो सर कटा है तो भाई इस्लाम की वजह से कटा है ना, राइट, इस्लामी की वजह से जाकर के लड़ा था ना, तो इसको शहादत का दर्जा मिलेगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा अफजल उसका मुकाम है कि जिसने कि अपनी जिंदगी जो है ना वो शरीयत के सामने झुक करके गुजारी, सिर्फ दाढ़ियां उगा करके नहीं गुजारी है बल्कि शरीयत के अहकामात को अपने ऊपर लागू करके जिंदगी गुजारी है, वो इस वाले शहीद से ज्यादा अफजल है, ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट, यानी इससे भी इसकी तकवीत मिलती है कि जिहाद असगर और जिहाद अकबर में क्या क्या फर्क है। बहरहाल फरमाते हैं फायदा, यानी एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, जैसे हमारे मशायख फायदे की अनुमान के साथ देखते हैं इसको, कि तफसीर मजहरी में इस दूसरी तफसीर को इख्तियार करके इस आयत से ये मसला निकाला है कि सहाबा कराम जब मुकाबले कुफार में जिहाद कर रहे थे, ख्वाहिशात नफसानी के मुकाबले का जिहाद तो उस वक्त भी जारी था जब वो मैदान जंग में थे, तो भाई वहां पर भी तो नफ्स कोई खत्म की थोड़ी हो रहा था, वहां पर भी हर बंदे के अंदर एक नफ्स मौजूद है मैदान जिहाद के अंदर भी, तो उसके साथ तो मुजाहिदा वहां पर भी जारी था, मगर हदीस में उसको वापसी के बाद जिक्र किया है, इसमें इशारा यह है कि अहवाए नफ्स के मुकाबले का जिहाद अगरचे मैदान कारजार में भी जारी था, अहवाए नफ्स क्या होते हैं, نفس کی خواہشات، ٹھیک ہے، ہوا، حرص و ہوا، خواہشات، ٹھیک ہے، جو کہ انسان کو اڑاتی ہیں. ہوا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوا، اڑانے والی چیز. تو یہ جو خواہشات ہیں نا، یہ انسان کو اڑاتی ہیں. یہ پھولا نہیں سمانا ہے نا، اپنے جگہ پہ ٹکنا نہیں، ہر وقت جو ہے نا وہ کبھی ادھر جا کے کھانا ہے، کبھی ادھر جا کر کے جو ہے وہ ٹوریزم کرنا ہے، کبھی ادھر جا کر کے جو ہے وہ شاپنگ کرنی ہے، کبھی ادھر جا کے شاپنگ کرنی ہے. یہ خواہشات ہوتی ہیں جو اس کو ٹک کر کے بیٹھنے نہیں دیتی. یا یہ کہ آج کے دور کی خواہشات کے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے، اس مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے، اس والے قاری صاحب کا قرآن سننا ہے، اس والے قاری صاحب کا قرآن سننا ہے. اور ہیں کیا جی، خاتون خانہ، خاتون خانہ ہیں اور دینی خواہشات پالی ہوئی ہیں اتنی ساری کہ ٹک کر کے بیٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. کرنا فی بیوتکن کو جو اللہ کا حکم ہے وہ گیا سائڈ پہ، اور ان کو جو ہے نا وہ قرآن سننے کی اور قاری صاحب کو دیکھنے کی اور جو ہے وہ مسجدیں وزٹ کرنے کی اور فلانے جگہ پہ جو ہے وہ دینی پروگرام میں جانے کی. اور تو یہ ہوا اس لیے کہا گیا اس چیز کو ہے نا، ہوائے نفس. تو خواہشات نفسانی کے مقابلے کے جہاں سو بھی جاری تھا، مگر حدیث نے اس کو واپسی کے بعد ذکر کیا. اس میں اشارہ یہ ہے کہ احواء نفس کے مقابلے کا جہاد اگرچہ میدان کارزار میں بھی جاری تھا، مگر عادتاً یہ جہاد شیخ کامل کی صحبت پر موقوف ہے. عادتاً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی عادت یہ ہے کہ یہ شیخ کامل کی صحبت پر موقوف نہیں. عادتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے جو اصول بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو عادت کہا جاتا ہے، عادت اللہ. اور ایک چیز ہوتی ہے قدرت اللہ. لفظ قدرت اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے، بڑا اللہ تعالیٰ. اس کانٹیکسٹ میں جب لفظ قدرت اللہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ عادت کو چھوڑ کر کے بھی کبھی کوئی کام کر دیا کرتے ہیں، اصول کو اور نظام کو چھوڑ کر کے بھی کبھی کوئی کام کر دیا کرتے ہیں. اس کے لیے قدرت اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے عادت یہ ہے کہ انسان نہیں اڑ سکتا، چلنا ضروری ہے اس کے لیے، ہے نا، جیٹ ایئر کرافٹ یا پروپیلر ہیلی کاپٹر کے بغیر بھی یہ اوپر نہیں جا سکتا. تو یہ عادت ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کشش ثقل کی وجہ سے زمین کی طرف اڑ نہیں سکتا. لیکن قدرت کیا ہے کہ کبھی کسی صاحب کو جو ہے نا وہ کرامت دے دی یا استدراج دے دیا، اب وہ کیا نام ہے اس کا، کرامت تو کسی ولی صاحب کے پاس ملتی ہے تو وہ کرامت ہوتی ہے. لیکن ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے نا، ایک بڑے میجیشن، کافر ہے، یہودی ہے بلکہ، رائٹ، تو وہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی نیکی کی وجہ سے ہوا میں نہیں اڑا ہوتا، بلکہ اس کو استدراج اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ یہ جو جہاد ہے نا، جہاد نفس جو ہے، ٹھیک ہے، نفس کے خلاف جہاد، یہ شیخ کامل کی صحبت پر ہی موقوف ہے. یعنی شیخ کے ساتھ اس کا اصلاحی تعلق ہوگا، اور شیخ کے واقعی اصلاحی تعلق، یعنی کہ بیعت کر لی، برکت والی بیعت کر لی، یا یہ جو ہے وہ اپنا نام لکھ، ہم تو شیخ صاحب کے مرید ہیں، یعنی کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، پوچھنا پاچھنا کچھ نہیں ہے، بتانا بتانا کچھ نہیں ہے، اور جی شیخ صاحب کے ہم تو مرید ہیں بھائی، ایسے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس سے نہیں ہوتی. تو باقاعدہ اصلاحی تعلق، صحبت کا مطلب یہاں پر اصلاحی تعلق ہوتا ہے. خواتین اکثر یہ سوال کرتی ہیں، بلکہ چند دن پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا، شاید یاد ہے، ابھی تک ان کو جواب نہیں دے سکا ہے، یہی سوال کیا تھا کہ مردوں کو تو صحبت مل جاتی ہے، عورتوں کو تو صحبت کیسے مل سکتی ہے پردے کی وجہ سے. نہیں، یہاں پہ اس صحبت کی بات ہی نہیں ہو رہی، فزیکل صحبت کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ لفظ صحبت کا مطلب یہ ہے اصلاحی تعلق، چاہے وہ ہزار میل دور رہ کر کے بھی خط و کتابت کے ذریعے سے کیا جائے. فزیکل صحبت کا یہاں پہ مطلب نہیں ہے، ورنہ فزیکل صحبت میں تو منافقین بھی آ جاتے ہیں، بہت سارے منافقین کل بھی آتے تھے، آج بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ بیٹھتے تو آ کر کے صحبت میں ہیں لیکن دل میں کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے ان منافقین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. مسجد نبوی کی بابرکت جگہ میں آ کر کے بیٹھنے سے ہے نا، اور ان لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کے باوجود ان منافقین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ فزیکل صحبت مراد ہی نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. البتہ جن کی دل جو ہے نا وہ محبت میں مبتلا ہوں اور وہ فزیکل صحبت میں مرد، सिर्फ मर्दों की बात हो रही है, और वो फिजिकल सोहबत में भी हों और उनके जो है वो दिल भी जो है ना वो मुकम्मल तौर पर सुपुर्दगी के साथ मौजूद हो, तो फिर उनको फिजिकल सोहबत से भी कुछ एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से खवातीन का बिल्कुल भी ये मसला कोई नहीं है कि जी हम तो सोहबत भी नहीं आ सकते, इस वजह से हमें कैसे फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उस सोहबत की बात नहीं हो रही। ये जो जूम के ऊपर जो है ना, ये भी तो सोहबत ही है भाई, बयान के अंदर आते हैं, पर्दे में बैठते हैं, सोहबत ही है। ठीक है, और फिर जो खतों किताबत के जरिए से जो अहवाल बताते हैं या कुछ सवाल पूछते हैं और जवाब मिलता है, फिर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, सबका सब सोहबत है। ठीक है, तो उम्मीद है कि वो जिन्होंने सवाल किया था वो मौजूद होंगी, तो उनको जवाब मिल गया। आजकल तो मुसलमान आपस में एक दूसरे को ही मार रहे हैं जिहाद के नाम पे, क्या मुसलमान का दूसरे मुसलमान को मारना सही है, और क्या उनको भी शहादत का अजर मिलेगा जो ऐसा कर रहे हैं जिहाद के नाम पे। जिहाद के नाम पे जो ऐसा कर रहे हैं, जो जिहाद के नाम पे ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है, इस जुमले का मतलब ये होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, जिहाद नहीं कर रहे, फसाद कर रहे हैं, लेकिन नाम उन्होंने जिहाद दिया हुआ है। तो जो ऐसा काम कर रहे हैं ना कि कर वो फसाद रहे हैं, नाम जिहाद का ले रहे हैं, 100% उन कोई शहादत का ताल्लुक नहीं है, कोई शहादत नहीं मिलेगी उनको। ठीक है ना, जो ये धोखा दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, उनको तो कोई शहादत नहीं मिलनी। ठीक है ना, चाहे वो कितना ही मरते रहे, कोई शहादत नहीं मिलनी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है कि हैं तो मुसलमान, लेकिन एक जो पार्टी है वो बातिल का साथ दे रही है, और वो वाकई है, यानी शरीयत में साबित जो है ना, वो साबित तरीके से वो गलत काफिरों का साथ दे रही है, काफिरों के ना, और एक पार्टी मुसलमानों की जो है ना वो वाकई हक का साथ दे रही है, और शरीय तौर पर जो है ना वो उलमा के फतवे के साथ जो है वो जिहाद कर रही है। ठीक है ना, तो इस केस में अगरचे कि उधर भी मुसलमान है, उनको हम काफिर नहीं कह रहे कि वो जो है वो काफिरों का साथ दे रहे हैं, तो इस वजह से वो काफिर हो गए, नहीं, काफिरों का साथ देने से कोई काफिर नहीं हो जाता। ठीक है ना, तो उधर भी मुसलमान है, लेकिन इधर जो है ना वो हक के साथ मुसलमान है। ठीक है, तो ऐसे जो मुसलमान होंगे जो कि हक के साथ जो है वो अगले दूसरे मुसलमानों की पार्टी के साथ जिहाद कर रहे हैं, तो अगर ये शहीद होते हैं, अगर ये मारे जाते हैं, तो ये शहीद होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि जी उधर चूंकि मुसलमान थे और इधर भी मुसलमान थे, तो अब तो शहादत नहीं हो सकती इसके अंदर, ऐसा नहीं। ठीक है, ये डिपेंड करता है तफसील के ऊपर, डिपेंड करता है दलील के ऊपर, वरना तो हर बंदा अपने आप को हक भी समझता है, अपने आप को भाई दलील क्या है आपके पास, जो पीछे हम कई तफसील से बात कर चुके हैं, सुल्तान होना चाहिए, सुल्तान होनी चाहिए, दलील और इल्म, इन दोनों की बुनियाद पे फैसला किया जाएगा कि कौन हक पे कौन हक पे नहीं है, ख्वाहिशात और अपने समझ के मुताबिक थोड़ी कि मैं आपकी हूँ, अगला बंदा बातिल पर है तो मैं शहीद हूँ और वो शहीद नहीं है, नहीं। ठीक है, इस्तिदराज क्या होता है? इस्तिदराज जो है ना वो आदत से हट करके कभी जो अल्लाह ताला एक्सेप्शनल मामला किसी के साथ कर देते हैं ना, तो इसको अगर अल्लाह ताला ने ये मामला किसी के साथ किया और वो शख्स नबी था अल्लाह का, ठीक है, तो इसको कहेंगे कि इसको मौजजा कहेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी हैं, चांद की तरफ उंगली से इशारा करते हैं, चांद जो है वो दो टुकड़े हो जाते हैं। भाई इंसान के पास अल्लाह ने ये ताकत नहीं दी है कि वो उंगली की इशारा करे और चांद, या क्या चांद, एक पत्थर भी उंगली के इशारे से दो टुकड़े नहीं हो सकता, ये पूरा का पूरा चांद कैसे हो सकता है? लेकिन अल्लाह ताला ने ये नबी अलैहि सलाम को उस टाइम पर ये मामला कर दिया, ये नहीं कि ताकत दे दी, नहीं, ताकत तो अल्लाह की थी, लेकिन ये मामला नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे करवा दिया। लेकिन चूंकि ये नबी थे ना, इसको कहेंगे मौजजा। नबी अलैहिस्सलाम पत्थर के पास से गुजरते हैं, पत्थर जो है वो अस्सलाम वालेक या अय्युहन नबी, राइट, तो पत्थर कभी किसी को सलाम करता है नहीं, आदत तो नहीं है अल्लाह ताला की, लेकिन पत्थर ने सलाम किया, तो चूंकि नबी को सलाम किया, ये कहलाएगा मौजजा। अच्छा, कोई अल्लाह के वली गुजर रहे हैं, नबी नहीं है लेकिन नेक मुत्तकी परहेजगार और पक्के ठक्के अल्लाह के वली हैं, वो गुजर रहे थे, पत्थर ने उनको सलाम कर लिया, ठीक है ना, अल्लाह के हुक्म से पत्थर ने सलाम किया ना, ऐसे कोई थोड़ी कोई पत्थर सलाम कर सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये करामत कहलाएगी। ठीक है, करामत कहलाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से तीसरी चीज क्या है? इस्तिदराज। वो क्या है कि कोई काफिर गुजर रहा था, ठीक है ना। पत्थर जो है ज़ाहिर है काफिर को सलाम तो नहीं करेगा, क्योंकि सलाम तो अस्सलाम वालेकुम है ना, ये तो यानी महबूब तरीन एक अमल है, तो ये तो नहीं कह सकते कि पत्थर ने काफिर को सलाम कर लिया। पत्थर काफिर को सलाम नहीं किया, पत्थर ने काफिर को ओए क्या हाल चाल है तुम्हारे, की हाल है तोड़ा, ठीक है ना। तो पत्थर जो है वो क्या हाल चाल है तुम्हारे तो किसी आदमी से नहीं बोलता ना, लेकिन चूंकि इस काफिर मुशरिक मुनाफिक है ना, इससे जो है वो पत्थर ने कलाम कर लिया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इस्तिदराज, ठीक है, क्योंकि ये मामला अल्लाह ने काफिर के साथ किया, इसको इस्तिदराज कहेंगे। आदतन ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन कुदरतन अल्लाह ताला ऐसा कभी करवा देते हैं, तो उस अमल को इस्तिदराज कहते हैं। और आज उलेमा कैसा कैसे फतवा देते हैं कि जिहाद करो, कैसे फतवा देते हैं कि जिहाद करो, मतलब लोगों को कैसे पता चलता है कि अब वक्त आ गया है जिहाद करने का, लोगों को पता कैसे चलता है, आपने खुद ही बता दिया कि उलमा फतवा देते हैं, ठीक है। तो जब उलमा फतवा देते हैं तो फिर उनका फतवा जो है वो किसी पैम्फलेट की शक्ल में बांट दिया जाता है, ठीक है ना, या जो है वो आजकल आजकल तो खैर किसी ने फतवा दिया हुआ नहीं है, और अभी कोई जिहाद इस वक्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर एज्यूमिंगली किसी मुफ्ती आदम साहब ने फतवा दे दिया, तो आजकल आपके ख्याल में कैसे उसको वायरल किया जाएगा, है ना, ये कोई पूछने की बात है, उसको वायरल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और हो सकता है टीवी पर आकर के उनका फतवा जो है वो नशर हो जाए, किसी न्यूज चैनल के अंदर सबको पता चल जाएगा, हाँ जी उन्होंने आलिम साहब ने फतवा दे दिया, ठीक है। तो ये तो कोई बात होगी ना कि कैसे पता चलेगा लोगों को। कल एक खातून का पता चला जो हरम मक्की एतकाफ के लिए गई हैं अपने 3 बच्चे और शौहर को रियाज में छोड़कर, और शौहर को काम पर भी जाना होता है, माशाल्लाह जबरदस्त है ना। तो हम भाई हमको ये तखयलाती इमेजनरी मसले उठा करके कोई थोड़ी उनके बारे में आपके सामने बोलना शुरू कर देते हैं, है ना, कि भाई ऐसा अगर हो गया, किसी औरत ने ऐसा कर दिया तो फिर जो है ये गलत होगा, और अगर वैसा हो गया तो ये गलत होगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये सही होगा। तो भाई ये इमेजनरी हालात बयान करके यानी गढ़ करके आपके सामने बयान नहीं कर रहे ना, ये हकीकत में ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। आपको तो आज एक का पता चला, हमें तो पता नहीं कितनों का पता चलता रहता है, इसी वजह से तो बकते रहते हैं इन चीजों के ऊपर हर वक्त, इसी वजह से बोलते रहते हैं, राइट। तो लोग समझते हैं कि नहीं पता नहीं, ये तो खामखा हर वक्त ही एक मनफी बात करते रहते हैं, हर वक्त ही इनको जो है वो हमारी इबादतों से जो है वो मसला होता रहता है, और जो है वो हर वक्त जो है ना कोई इनको हर चीज के अंदर कीड़ा नजर आ जाता है ना। आपको चूंकि ये चीजें नजर नहीं आ रही होती, आपको इन चीजों से वास्ता नहीं पड़ रहा होता, राइट, तो आप समझते हैं सब बड़ा अच्छा है, सब ठीक ठाक है ना बस। हाँ छोटी मोटी कुछ, वो तो हर जगह ही कुछ ना कुछ छोटी मोटी तो खराबियां होती ही हैं, नहीं अंदाजा नहीं है, हमें अंदाजा नहीं है क्या चल रहा है इस वक्त, क्या मामला हैं, ठीक है। तो ये तो आपने एक छोटा सा वाक्य बता दिया, अब वो 3 बच्चे जाएं, फोन है ना अल्लाह ने दिया हुआ, टैब दी हुई है ना, तो बच्चे फोन करें, टैब करें, टैब के ऊपर हवाले जो करना है करें उसको, है ना, हमें तो चलना है अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, ठीक है ना, एतकाफ करने को, ठीक है चलें बहरहाल। और ये खाली फोन टैब से ऐसे कुछ थोड़ी वो जो वीडियो गेम खेल के उनकी आंखें खराब नहीं, तो ये भी हमारे बड़े मसले हैं ना, हम जो है ना वो आंखें खराब होने के चक्कर में भी तब फंसे हुए हैं कि टैब देख के आंखें खराब हो जाती हैं, इस वजह टैब नहीं देना चाहिए। अल्लाह के बंदे टैब देख के आंखें तो खराब पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, ईमान तो चुटकी बजाते हुए खत्म होता है, और ऐसे जो है वो बच्चों के अंदर चीजें पैदा होती हैं कि यानी अच्छे अच्छे बच्चों वाले जो अम्मा अप्पा होते हैं ना वो यानी सुन भी नहीं सकते उन बातों को जो बच्चे कर रहे हैं इस वक्त, 6 साल से लेकर के 7 8 साल का बच्चा जो हरकतें कर रहा है, 9 साल का बच्चा जो हरकतें कर रहा है, राइट, कोई दूसरा उसको हाथ आ जाए ना, कोई बच्ची उसके हाथ आ जाए तो उसके साथ क्या करता है, राइट। तो भाई आंखें खराब होने वाला मसला इस वक्त नहीं है, तो पुराने बचपन की बातें होंगी, आंखें खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये हम इबादतों में लगे हुए, और बच्चे को जो है फोन टैप पढ़ाया हुआ है या टीवी के सामने बिठाया हुआ है, तो आपकी इबादतें क्या आपके खिलाफ ही हुज्जत बन रही है इबादतें, या आपको जहन्नुम में लेकर के जाएंगी ये वाली इबादतें, है ना, जैसे पीछे बात हुई थी ना कि ये बंदगी नहीं है, ये सरासर गंदगी है ये वाली इबादत, ठीक है। चले बहुत टाइम हो गया तो खत्म करते हैं, वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
रिकॉर्डिंग स्टॉप।